नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दीपों के पर्व दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। राष्ट्रीय राजधानी को सुंदर, स्वस्थ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए दिल्ली सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू, उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना। और दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने राजधानी में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह घोषणा नई दिल्ली के लाल किला में आयोजित यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान की गई। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिव विवेक अग्रवाल और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र सहित संगीत नाटक अकादमी के अधिकारी उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
औपचारिक घोषणा के बाद पूर्ण सत्र कक्ष में सांस्कृतिक समारोह शुरू हुआ, जिसमें देश भर के लोक नृत्य, भारतीय ध्वज का ध्वजारोहण और भारत माता की जय और जय श्री राम जैसे नारों का उद्घोष हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई नहीं जाती बल्कि पीढ़ियों तक इसे महसूस किया जाता है, जिया जाता है और आत्मसात किया जाता है। श्री शेखावत ने इस बात पर बल दिया कि यह मान्यता केवल एक सम्मान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, ताकि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे।
भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्योहार का, जो त्योहार सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है, वो त्योहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूँ।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह घोषणा विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति का एक नया स्वर्णिम अध्याय है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह सम्मान दीपावली के प्रकाश, सद्भाव और मर्यादा जैसे शाश्वत मूल्यों की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है।
हम सभी देशवासियों के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिस पे मैं दिल की गहराई से आप सभी को बधाई देती हूँ और बधाई देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया। यूनेस्को का यह सम्मान रामायण की करुणा, मर्यादा और धर्म आधारित हमारी लोक संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता है।
यूनेस्को द्वारा दीपावली को एक जीवंत विरासत के रूप में मान्यता देना सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है, पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देती है और उदारता और खुशहाली के मूल्यों को सुदृढ़ करती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दीपों के पर्व दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किए जाने के उपलक्ष्य में राजधानी के दिल्ली हाट में दिए जलाकर दीपावली उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा कला और सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा सहित अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। श्री मिश्रा ने बताया कि दिल्ली की प्रमुख क्षेत्रों में इमारतों, चौक चौराहों पर रोशनी और सजावट की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने दलीलें सुनी। एक रिपोर्ट।
जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि फरवरी 2020 के दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि ये भारत की संप्रभुता पर एक सुनियोजित हमला था। उमर, शर्जील और अन्य आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इन पर 2020 के दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए थे। ये हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। आरोपियों ने दंगों की साजिश के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि इंडिगो की कई उड़ानों को रद्द करने की स्थिति आखिर क्यों उत्पन्न हुई। उच्च न्यायालय ने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को हुई परेशानी और असुविधा के अलावा देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का भी सवाल है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख अगले महीने की 22 तारीख तक यदि जांच समिति की रिपोर्ट पूर्ण हो तो उसे सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह समझौता फ्लाईओवरों के सौंदर्यकरण, चिकित्सा उपकरणों के प्रावधान, वाटर एटीएम की उपलब्धता, ऊर्जा केंद्रों की स्थापना और बसों की ब्रांडिंग से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह पहल दिल्ली को सुंदर, स्वस्थ और सुव्यवस्थित राजधानी में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह और डॉ पंकज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और इसका उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पर्यावरण विभाग, जिला प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को इन प्रतिबंधों पर सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। श्रीमती गुप्ता ने नागरिकों से प्रदूषण नियंत्रण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और खुले में कूड़ा नहीं जलाने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज विकसित दिल्ली, विकसित पर्यटन और आतिथ्य शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से दिल्ली में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है, साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास, अधोसंरचना सुधार तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज राजधानी के हस्तसाल और विकासपुरी इलाके में स्थित DAV विद्यालय के सामने स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद श्री सूद ने कहा कि यहाँ प्रतिदिन हजारों बच्चे आते हैं, लेकिन स्कूल के सामने कूड़े की मौजूदगी से उन्हें असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कूड़े के निस्तारण, नियमित सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन को तुरंत प्रभाव से बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।
भारतीय जनता पार्टी श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की प्रतिबद्धता है कि दिल्ली में स्वच्छता रहे, सफाई रहे और हम नगर निगम को हर प्रकार का सहयोग देकर इस सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। खींचतान बंद हो, एक दूसरे पर दोष डालना तो हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विभागों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर स्थापित हो, इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी है।
दिल्ली सचिवालय में आज सड़क सुरक्षा से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने के विषय में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा से संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी सभी विभागों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर एक माह चलने वाला दिल्ली मेट्रो अभियान शुरू किया। यह अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन की साझेदारी में किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मेट्रो और चुनिंदा स्टेशनों पर संदेश प्रदर्शित करके लाखों यात्रियों तक पहुंचना है। यह अभियान महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व, डिजिटल अंतर को पाटना, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की पहुंच में सुधार, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों और TB जागरूकता पर प्रकाश डालेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने अनियंत्रित टाइप 2 मधुमेह के 30 से अधिक मामलों में मेटाबॉलिक सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। नई दिल्ली में आज एक एम्स के सर्जरी विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर मंजुनाथ ने कहा कि यह चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे गंभीर रूप से अनियंत्रित मधुमेह से ग्रस्त मोटापे के रोगियों को सर्जरी के माध्यम से स्थायी राहत मिल सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि अनियंत्रित मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए सर्जरी एक उपचार विकल्प के रूप में उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक अवैध शराब के आपूर्तिकर्ता को राजधानी के द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इस शराब को हरियाणा में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रही एक गाड़ी को भी जब्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मानवाधिकारों की न केवल रक्षा की जाती है बल्कि उनका सम्मान भी किया जाता है। नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस 2025 और दैनिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
Human rights are contained in the vision of our constitution. Highlighting our constitutional objectives, we must make our political democracy a social democracy as well. Human rights promote social democracy. Human rights encompass the right to live without fear, to learn without barriers, to work without exploitation, and to age with dignity.
दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह और उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने आज राजधानी के खजूरी चौक स्थित डीडीए ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि यह महोत्सव युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने, प्रतिभाओं को मंच देने और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिभाओं को उभरने का अवसर भी प्रदान करेंगे। दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 का मुख्य केंद्र आज शिल्प दीदी पर रहा। राजधानी में चल रहे इस हस्तशिल्प सप्ताह का उद्देश्य महिला उद्यमियों को बढ़ावा देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी के वसंत कुंज में शिल्प दीदियों द्वारा तारकाशी, चंबा रुमाल, ताड़ के पत्तों पर नक्काशी, पट्टा चित्र, सुजानी और सिक्की शिल्पकला जैसे हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए। इस प्रकार का आयोजन लोगों को सदियों पुरानी तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति सांस्कृतिक एकता और भाषाई विविधता के संगम में निहित है। नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं के संवर्धन और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के विषय पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने भाषिणी, केटीएस, आदिवाणी और संचिका जैसे मंच विकसित किए हैं ताकि भाषा भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी रहे। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस बीच राजधानी में वायु गुणवत्ता आज खराब स्तर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दीपों के पर्व दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। राष्ट्रीय राजधानी को सुंदर, स्वस्थ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए दिल्ली सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू, उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने राजधानी में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।